તારીખ 1-1-1990 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 397 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 121
શુભેચ્છા સંપન્ન ભાઈ ત્રિભુવન સ્તંભતીર્થ મેને ખંભાત એ પુરાણા નામ હૈ ખંભાત કા સ્તંભતીર્થ આત્મસ્વરૂપ મેં સ્થિતિ હૈ એસે જો અપના કોઈ આધ્યાત્મિક નામ લિખા હોગા उसके निष्काम स्मरण पूर्वक यथा योग्य पढ़िएगा। मैंने वो नाम नहीं लिखते हैं, कभी 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 लिखते हैं संपादक, ऐसा लिखा का आत्मस्वरूप में स्थिति है ऐसा जो, मैंने अपनी स्थिति आत्मस्वरूप में स्थित है उसका किसी भी अन्य हेतुवश नहीं, एक आत्म हेतुवश निष्काम मैंने सिवा आत्म कल्याण का दूसरा कोई हेतु जिसमें नहीं है उसको निष्काम कहते हैं। उस तरफ का आज शायद समकित नहीं होता इत्यादि संबंधी व्याख्यान के प्रसंग का आपका लिखा पत्र प्राप्त हुआ है। वहाँ कोई साधु वगैरह आए होंगे और जिनागम में ये बात, आगम में ये बात प्रसिद्ध है, वो आगम का विधान है कि आज मैंने इस काल में क्षायिक संकित नहीं होता। क्षायिक संकित केवली के पादमूल में होता है तो केवली नहीं होते, फिर क्षायिक संकित होने का सवाल नहीं, ऐसा कोई व्याख्यान में चर्चा वगैरह चली होगी। तो इस विषय कोई छेड़ा है त्रिभुवन भाई ने अपने पत्र में, इसका प्रसंग आपका लिखा पत्र प्राप्त हुआ है। जो जीव उस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, ऐसी बातों का प्रतिपादन करते हैं, उपदेश भी करते हैं और उस संबंधी विशेष रूप से जीवों को प्रेरणा करते हैं, क्या करते हैं, देखिए आज साक्षात संकेत नहीं होता, नहीं होता उसमें रस आता है, क्या होता है उसमें रस नहीं आता है, नहीं होता है उसमें रस आता है, तो उसको प्रेरणा करते हैं, देखिए आजकल साहिक संकेत इधर नहीं हो सकता। वे जीव जितनी प्रेरणा क्षायिक संकेत नहीं होता है इसमें करते हैं, ऐसे जीव यदि उतनी प्रेरणा और गवेषणा अंतर संशोधन जीव के कल्याण के विषय में करेंगे तो उस प्रश्न के समाधान होने का कभी भी उन्हें प्रसंग प्राप्त होता होगा। देखिए वो उल्टे जा रहे हैं, मैंने आगम का ये विधान है तो उससे यथार्थपणा कैसे साधित करता है, साधता है यथार्थपणा, यही तो इस लाइन में मुमुक्षु भूमिका से जो पटरी बदलती है ये यथार्थपणे और अयथार्थपणे से ही बदलती है। आगम तो जो है सो है, ज्ञानी के वचन जो है सो है, लेकिन उसमें से कोई यथार्थ रूप परिणमता है, उसी निमित्त से कोई अयथार्थ रूप परिणमता है, ये दो प्रकार बनते हैं। तो जो अयथार्थ रूप परिणमते हैं वो कोई आगम से विरुद्ध ही विचार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो आगम में लिखा है वैसा ही विचार करते हैं, आगम आगम का आधार लेने वो उनके उसके अनुकूल ही अर्थघटन करता है, भावार्थ करता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण गलत रहता है। जैसे कोई विद्वान है वो अपनी महत्ता बढ़ाने के हेतु बहुत अभ्यास करके बहुत बातें करते हैं शास्त्र के अनुकूल, लेकिन ये सब बातों करने में भले कहीं भी शब्दार्थ भावार्थ नयार्थ में गलती नहीं हो, लेकिन उनका दृष्टिकोण तो रहा है कि मेरी महत्ता कैसे बढ़े। इन सब बातों करते हुए, इन सब प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए, ये सुनने वालों में मेरा स्थान कैसे और विशेष महत्ता वाला हो जाए, महत्ता प्राप्त की हो, उसमें वृद्धि कैसे हो, उसमें कमी नहीं हो, मेरा स्थान टिका रहे या वृद्धिगत होता रहे, ये जो दृष्टिकोण है ये शास्त्र संज्ञा है, ये शास्त्रीय अभिनिवेश है, और सही अर्थ घटन होते हुए भी उसमें गलत दृष्टिकोण है, इसलिए इसकी समझ यथार्थ नहीं है। ठीक दिखती है फिर भी यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है। उन जीवों के प्रति दोष दृष्टि करना योग्य नहीं है, भले ऐसे जीव स्वयं दोषित होते हैं फिर भी उसकी दोष इसके दोष की मुख्यता हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर इनके दोष की हम मुख्यता करेंगे हमारा जो द्वेष है ये इनके प्रति हो जाएगा। और द्वेष दृष्टि में एक दूसरी ये बात है कि द्वेष दृष्टि करने वाले को सामने वाला जो दोषित परिणाम में है उसको पूरा आत्मा ही वो दोषित समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, इनकी अवस्था में भूल हुई है, वो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए ऐसा दोष उनको हो जाता है, ऐसा ज्ञान कर लेना चाहिए। तो ये दोष का निषेध हो सकता है और ये वाजिब भी है, योग्य भी है कि दोष का निषेध करो, लेकिन दोष दृष्टि रख करके नहीं, उसमें तो पूरा आत्मा के प्रति द्वेष हो जाएगा, तो पूरा उसका व्यक्तिगत जो द्वेष हो जाएगा, उस पूरी व्यक्ति के हिसाब से जो द्वेष हो जाएगा, तो फिर वो सलटेगा तो भी अपना अभिप्राय नहीं बदलेगा, क्योंकि द्वेष दृष्टि हो गई है, दोष दृष्टि हो गई है, तो वो गुणवान हो जाएगा तो भी वो सम्मत नहीं करेगा, और पर्याय तो पलटने वाली चीज है, पर्याय पलट जाएगी खुद नहीं पलट सकेगा, ये नुकसान अपने स्वयं को रह जाएगा। और जिसको ऐसी दोष दृष्टि नहीं होती है और यथार्थ रूप से सामने वाले का दोष ज्ञान में ले लेता है, उनको दोष का निषेध आता है, इस आत्मा का व्यक्ति का निषेध नहीं आता है। जब ये पलटा मारता है तो उसको ये बहुत आदर करता है, ये काम बढ़िया किया, बहुत सुंदर किया, हम बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुशी हो गए, आपने पलटा खा लिया, ये बहुत अच्छा काम है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो बदलता है तो दोष दृष्टि वाला नहीं बदल सकता, पर दोष दृष्टि नहीं है, गुण दृष्टि है, तो दोष निकालता है तो उसको बहुत आदर करने लगता है, उसको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत रिस्पॉन्स देता है, ऐसा हो जाता है। इतना फर्क पड़ता है, दृष्टि दृष्टि में फर्क है। इसलिए उन जीवों के प्रति दोष दृष्टि करना योग्य नहीं है, केवल निष्काम करुणा से मैंने किसी भी अन्य प्रकार के आशा और अन्य प्रकार के हेतु को मन में रख करके नहीं करना है, एक आत्म कल्याण निष्काम करुणा से उन जीवों को देखना योग्य है कि बेचारे अपना अहित कर रहे हैं, इनका हित हो तो अच्छा, हम तो सभी के हित को चाहते हैं तो इनका अहित क्यों चाहेंगे, इनका भी हित हो, ये भी सन्मार्ग पर आ जाए, यही हमारी भावना और करुणा रहती है। उसका तो दुखी है, तो दुखी देखकर करुणा को तो आएगी ही आएगी, तो दुखी है इसे जीव तो हाँ समझने योग्य है। मनुष्य समाज में ऐसा होता ही है, कोई गलत काम करता है, कोई खोटा रास्ता पर चलता है, कोई सबका विरोध करता है, ऐसा होता है तब राग द्वेष का एक प्रकार चालू हो जाता है आपस में। उस वक्त ये सावधानी रखने योग्य है हम लोगों को कि द्वेष और दोष दृष्टि नहीं हो जानी चाहिए। हमें सिर्फ दोष और गुण का ही ज्ञान करके गुण का आदर करना है, दोष का निषेध करना है, दोषवान का निषेध नहीं करना है। वहाँ पर्याय का भेद छांटना अवश्य है, आवश्यक है, सम्यक दर्शन में नहीं। ये न्याय सम्यक दर्शन में लागू नहीं होता जो दोष में लागू होता है। भेद प्रभेद का भी कुछ हेतु होता है, ये हेतु यहाँ सफल होता है। उन जीवों के प्रति दोष दृष्टि करना योग्य नहीं है, केवल निष्काम करुणा से उन जीवों को देखना योग्य है। तत्संबंधी किसी प्रकार का खेद चित्त में लाना योग्य नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति खेद लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। करुणा लाओ, खेद मत लाओ। खेद में द्वेष होता है और करुणा में द्वेष नहीं होता है, उसकी भलाई का ही अभिप्राय रहता है। दोष छुवा नहीं, उदयमां तो ये बात बनशे नहीं। जारे संप्रदाय ना कोई माणस तमारी पासे आवशे के हे तमे त्यां जवा मांड्या, काई भान छे तमने लोकोने, अपना आवा मोटा मोटा आचार्य छे ने छोड़ी ने जाओ छो, तो नहीं जवानो क्या प्रश्न रहेशे? अमे थी कोई आवे तो है, એટલે એ વસ્તુ તો કઈ નિવારી શકાય એવી નથી હોતી, અનિવાર્ય હોય છે। સામા વાળાનો દોષ છે એ ખ્યાલમાં આવી જ જાય કે આ કશાય વસ્તુ પ્રવૃત્તિ કરે છે, કશાય પણ એનો તીવ્ર દેખાય છે, એને કોઈ પણ માણસ સમજી શકે કે આ તીવ્ર કશાયથી પ્રવર્તે છે। કોઈ ત્રાહિત માણસ પણ સમજી શકે કે આનો કશાય અત્યારે તીવ્ર છે। તો દોષ છે ખ્યાલમાં આવવો એ કોઈ ગુનો નથી, દોષ નું જ્ઞાન થાય એ કોઈ અપરાધ નથી। પણ દોષ નું જ્ઞાન કે ગુણ નું જ્ઞાન યથાર્થ થવું જોઈએ, નહીતર અપરાધ થાય। આમાં તો જ્ઞાન બંધ કરવાની વાત આવી તમારા પ્રશ્નમાં કે જાણવું જ નહીં આપણે। જ્ઞાન ને પ્રતિબંધ મૂકવાની કોઈ જરૂર નથી, જ્ઞાન ને અટકાવવાની કોઈ જરૂર નથી। જ્ઞાન તો જાણને કા કામ કરેગા, ઉનકા સ્વભાવ હૈ, કરને દો, લેકિન ઉસમે એ યથાર્થતા નહીં હોની ચાહીએ, યથાર્થતા રહેની ચાહીએ, એ વાત હૈ। ઠીક ઠીક અપને હા ઠીક ઠીક નહીં હોના, ઓર કોઈ દોષ કા જ્ઞાન હોતા હૈ તો ઉસમે તો અઠીક હો જાયેગા, ક્યોંકિ ગુણ કી દ્રષ્ટિ હૈ, ગુણ કા કી અભિલાષા હૈ, તો દોષ અચ્છા નહીં હૈ એસા તો લગેગા। તો ઉસ ભૂમિકા મેં દોષ અચ્છા નહીં હૈ એસા લગતા હૈ, વો યથાસ્થાન મેં હૈ, કોઈ અસ્થાન મેં નહીં હૈ, લેકિન દોષ દ્રષ્ટિ નહીં હોની ચાહીએ કિસી દૂસરે કે પ્રતિ, એ સાવધાની રખને કી બાત હૈ। દોનો મેં સૂક્ષ્મતા હૈ, એક બાત નહીં હૈ, અલગ અલગ બાત હૈ। હા ગુણ દ્રષ્ટિ સે દોષ કો દેખો, ગુણ દ્રષ્ટિ સે મેને वो उनका दोष मिटे और वो गुण को गुण की प्राप्ति होवे, यही भावना गुण दृष्टि के साथ में रहती है, इसलिए करुणा आती है, उसको गुण दृष्टि कहते हैं। उस प्रकार से हाँ भगवान भगवान तुझे ऐसा नहीं विचार करना चाहिए, तुझे जाना ऐसा नहीं परिणाम करना चाहिए, वो करुणा से कहते थे। આદત પડ ગઈ હૈ તો ઉસકા સુધાર કરના હૈ, એ તો હમારા દોષ હૈ, તો હમ દૂસરે કે દોષ પ્રતિ દ્વેષ કર લેતે હૈ, તો હમારે દોષ પ્રતિ ક્યો નહીં દ્વેષ કરતે હૈ? वास्तव में अगर हमें दोष अच्छा नहीं लगता है तो हमारा दोष भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो हमारा दोष को तो हम देखे नहीं, तो दूसरे के दोष को मुख्य करेंगे तो व्यक्तिगत द्वेष हो जाएगा, तो ये नुकसान अपने को होगा, सामने वाले को नहीं होगा, ये नुकसान तो अपने को होगा। खेद करना योग्य नहीं है, चित्त में खेद चित्त में लाना योग्य नहीं है, उस प्रसंग में जीव को उनके प्रति क्रोधादि करना योग्य नहीं है। देखो बहुत भाव सुंदर है इसमें कि उन जीव खेद चित्त में लाना योग्य नहीं है, आवे और लावे उसमें फर्क है। लाना योग्य नहीं है, आ जावे तो उसका निषेध करो, लाना योग्य नहीं है ऐसे जानते हैं फिर भी आ जाता है तो उसका निषेध होना चाहिए, और जो लाते हैं वो चाहते हैं वो उसका निषेध नहीं कर पाएंगे, ये बात हो जाएगी। तो कैसा वाक्य रचना कैसी है कि खेद चित्त में लाने योग्य नहीं है, और उस प्रसंग में मैंने ये लोग संप्रदाय वाले आएंगे, हमारे महाराज ऐसे कहते हैं, हमारे महाराज ऐसे कहते हैं, आप जिसके पास जाते वो तो ऐसे प्रतिपादन करते हैं, प्रतिपादन तो ऐसा करना चाहिए, तो उस प्रसंग में जीव को उनके प्रति क्रोधादि करना योग्य नहीं है, उनके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। उन जीवों को उपदेश द्वारा समझाने का कदाचित आपको विचार होता हो उनकी भलाई के लिए, दूसरे कारण से नहीं, इनकी भलाई के लिए कदाचित तुमको विचार होता हो कि उनको कुछ समझावे, तो भी उसके लिए आप वर्तमान दशा में देखते हुए तो निरुपाय है, इनका आवेग देखते हुए और इनका अभिप्राय देखते हुए ऐसा उपदेश उनको कोई लागू होवे, उपदेश को वो सम्मत करे, ये परिस्थिति देखने में नहीं आती तो निरुपाय है, जो निरुपाय है वहां प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है, वहां शांत रहना योग्य है। इसलिए अनुकंपा बुद्धि और समता बुद्धि से उन जीवों के प्रति सरल परिणाम से देखना। देखिए ये गाइडेंस दिया है, मार्गदर्शन दिया है, मैंने हर काल में ऐसा होता ही रहता है, वर्तमान काल में हुआ है इतनी बात नहीं है, हर काल में ऐसे होता रहते हैं, ज्ञानी के विरोध करने वाले, तीर्थंकर के भी विरोध करने वाले होते हैं। आदिनाथ भगवान का तो चतुर्थ काल का प्रारंभ था, फिर तो उतरता उतरता काल है, लेकिन जितने पीछे जाते हैं वो तो आगे आगे अच्छा अच्छा काल है, तो उसी काल में भी मारुति मरीचि ने विरोध किया। मैंने तीर्थंकर के विरोध करने वाले भी समोसरण के बाहर भले ही हो लेकिन है तो सही, तो होते हैं, तो ज्ञानी के भी विरोध करने वाले होते हैं, तो उनके प्रति हर काल में ऐसे प्रसंग बनते हैं इनके, इसलिए उन अनुकंपा बुद्धि से और समता बुद्धि से शांत रहना अच्छा है, उन जीवों के प्रति सरल परिणाम से देखना, सरलता उन जीवों के प्रति भी सरल परिणाम से देखना, असरल परिणाम से मत देखना। मैंने उनको हम वो अपने को मुश्किली में रखने हैं तो हम उनको मुश्किली में रखें, वो गलती करे तो और उसको गलती करने दो ताकि उनको नुकसान हो जाए, ऐसे नहीं, वो भी लाइन पर आवे, सीधी लाइन पर आवे, ऐसी चेष्टा करे अगर शांत रहे, लेकिन असरल परिणाम से उनके प्रति देखना नहीं चाहिए, सरल परिणाम से देखना और ऐसी ही इच्छा करना, ऐसी ही भावना करना, और यही परमार्थ मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है, ये वास्तविक मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है, ऐसा निर्णय करके प्रवृत्ति करना है, इस निर्णय को छोड़ करके उल्लंघन करके नहीं करना चाहिए। उनका अहित हो रहा है, अपने आप को दुर्गति में ले जाएगा, वो इस लाइन को छोड़ दे तो अच्छा है, समझे तो अच्छा है, ऐसी भावना अपने को रहनी चाहिए। अपनी लाइन बदले तो बहुत बढ़िया बात है इनके लिए, और शासन का भी हित नहीं होगा, सन्मार्ग का भी विरोध नहीं होगा, दूसरे लोग भी ऐसे योग्यता वाले इनके साथ जो है वो भी पलट जाएंगे, वरना इनके पीछे पीछे दूसरे भी चल जाएंगे। तो एक का हित होगा तो और कईयों का हित हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो दुखी होता है इसमें तो किसी को दुख के प्रति तो करुणा ही आवे। अभी उनमें जो कर्म संबंधी आवरण है, ऐसे लोगों को जो आवरण हुए हैं उसे भंग करने की यदि उन्हीं चिंता उत्पन्न हो, तो फिर आपसे अथवा आप जैसे दूसरे सत्संगी के मुख से कुछ भी श्रवण करने की वारंवार उन्हें उल्लास वृत्ति उत्पन्न होगी। क्या कहा है कि उपादान में कुछ ऐसा हुए कि मुझे तो मेरा कल्याण करना है, मेरा आवरण मुझे मिटाना है, मुझे आवरण बढ़ाना नहीं है, ऐसी अगर उनको चिंता हो अपने आप की, अपनी दुर्गति की, तब तो ये श्रवण के योग्य हैं। फिर आप श्रवण कराओ या कोई दूसरा सत्संगी उसको श्रवण करावे, कोई अच्छी बात कहे वो अलग बात है, लेकिन उनको चिंता नहीं है, वहां तक इनका उपादान में ये बात स्थान प्राप्त नहीं करेगी, उसको ये जचेगी नहीं, तो निषेध करते रहेगा कि नहीं नहीं ये बात हमको नहीं जचती, बात को विरोध हो जाएगा और विरोध हो जाएगा, और उसके चिंता होगी तो उसको उल्लास वृत्ति उत्पन्न होगी कि अच्छा आपने बहुत मेरे हित की बात कही, हित की बात सुनते ही उल्लास आता है योगी जीव को, अच्छा सही बात आपने बहुत सुंदर कही, ऐसी कोई बात हो तो और बताओ, अगर कोई मेरे दोस्त हो तो और बता दो, मुझे और कोई सुधार करना हो तो बता दो, उसको उसमें उल्लास आता है। और किसी आत्मस्वरूप सत्पुरुष के योग से मार्ग की प्राप्ति होगी, वो तो आपकी बात सुनेगा, और आत्मस्वरूप सत्पुरुष, सत्पुरुष कैसे होते हैं, आत्मस्वरूप सत्पुरुष है, उसका अगर इसको योग होगा तो उसको मार्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। परंतु ऐसी चिंता उत्पन्न होने का यदि उन्हें समीप योग हो तो अभी वे ऐसी चेष्टा में, समीप योग हो तो अभी वे ऐसी चेष्टा में न रहेंगे, विपरीत चेष्टा में नहीं रहेंगे, ऐसे मैंने विपरीत कि अगर उनको उस प्रकार की चिंता हो, अपने हित की चिंता हो अहित की चिंता हो इस विषय में, तो फिर वो अपने नुकसान करने के कारण में समीप नहीं रहेंगे, ऐसा प्रयत्न नहीं करेंगे। और अब तक जीव की उस प्रकार की चेष्टा है, तब तक तीर्थंकर जैसे ज्ञानी पुरुष का वाक्य भी उसके लिए निष्फल होता है। तेरी तो नहीं सुनेगा, ज्ञानी की तो नहीं सुनेगा, लेकिन तीर्थंकर आएंगे तो भी उनकी नहीं सुनेगा, स्वतंत्र है ये, समोसरण में हमारे जीव ने यही किया है अब तक। जब जब हम समोसरण में गए तो भगवान का जो अतिशय है, भगवान की जो प्रतिभा है, इसके अनुसार गए तो गए, सुना भी, कुछ ठीक भी लगा और कुछ डॉट डापण भी कर लिया कि ये क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, ये तो बात ठीक नहीं लगती है, मैंने कुछ तो अच्छा लगे कुछ अच्छा नहीं लगे, तो जो अच्छा लगा वो बात चौपट हुई, ऐसे वो अपना अभिप्राय को मुख्य कर लेता है। तो तीर्थंकर का भी जीव ने नहीं सुना है, हमारे जीव ने भी नहीं सुना है, तो दूसरों को देखकर ये भी विचार करे कि हमारा अनंत काल क्यों गया संसार में, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई आगे, क्या तीर्थंकर नहीं मिले, क्या श्री गुरु नहीं मिले, क्या सत्पुरुष नहीं मिले, आगम नहीं मिले, सब मिल चुका है, अनंत बार मिल चुका है, लेकिन यही कारण हुआ है कि जो दूसरे लोग विपरीत चलते हैं वैसे हमने भी आगे विपरीत मार्ग ग्रहण किया था, विपरीतता को लेकर के हम संसार में रुले, अब ये तो छोड़े तो अच्छा है, वरना हमको तो छोड़ना ही है, हमको तो ऐसे मार्ग पे कभी जाने का नहीं है। हाँ पूरी बताती है। प्रश्न ये है 99 बात तो दचे और एक बात के लिए निषेध कर ले, यानी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो गलती है। तो 99 उसको जो है वो चौपट हो गई, बात खत्म हो गई। अगर ऐसा जो राव है तो ये अच्छा है, ऐसा चाहने योग्य है, ऐसा भाने योग्य है। लेकिन ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा है ये है। हाँ दुनिया में ये कुदरत का ये नियम है, मेजर फोर्स प्रिवेल्स। जहाँ फोर्स ज्यादा होता है उसका ही काम होता है, जिसका जोर होता है उसका काम होता है। अगर एक का जोर होता है तो 99 को डाउन हो जाना पड़ता है, 99 वाले का जोर होता है तो एक को खत्म होना पड़ता है। जो मेजर फोर्स है उनके अनुसार, जैसे एक तिनका उड़ता है, ये कंट्रोल में एक तिनका उड़ता है तो किस दिशा में जाएगा कि जिसका फोर्स मेजर होगा, कभी यहाँ से जोर आता है, कभी इस दिशा में से, कभी इस दिशा में से, दसों दिशाओं में से तो फोर्स आता है, लेकिन जिसका मेजर फोर्स आता है उसी दिशा में वो भगता है। जीव का भी ऐसा ही है, समाज का भी ऐसा है। जैसे सत्ता इन जिन जिन लोगों के हाथ में थी, मेजर फोर्स हो गया इस साइड का, बात खत्म हुई। इसका जोर बढ़ता है उनका काम होता है। अगर एक का जोर ज्यादा है तो 99 तो सम्मत किया है लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। अगर सम्मत किया इसकी ताकत होती तो ये इसको खत्म करते। जैसे संगति के विषय में ले लेवे कि दो मित्र होते हैं, एक दुर्गुणी है, व्यसनी है, पापी है, एक सद्गुणी है। अब क्या होगा, सद्गुणी दुर्गुणी हो जाएगा या दुर्गुणी सद्गुणी हो जाएगा, क्या होगा बताइए आप। एक दूसरे की संगत के हिसाब से, आपस में प्रीति के हिसाब से कुछ तो होने वाला है। ये भी हो सकता है कि दुर्गुणी है वो सद्गुणी भी हो जाए, सद्गुण के संग से। और ये भी हो सकता है कि जो सद्गुणी है वो दुर्गुणी हो जाए। तो उसका कोई नियम है कहाँ, उसका भी सिद्धांत है कि जिसका बलवानपना है उसके अनुसार परिणाम आएगा। अगर सद्गुणी नबला है, उसकी ताकत नहीं है, और दुर्गुण वाला जोरदार आदमी है, तो ये जो सद्गुणी है वो दुर्गुणी हो जाएगा आगे चल करके। अगर सद्गुणी जो है वो बलवान है तो दुर्गुण वाले का दुर्गुण छूट जाएगा, वो सही रास्ते पे आ जाएगा। दो में से एक तो बनने वाला है, तो मेजर फोर्स हमेशा का है, यही सिद्धांत है। तो ये परसेंटेज का सवाल नहीं है कि 99 बात तो उन्होंने सम्मत कर ली और एक बात सम्मत नहीं की, तो एक बात ऐसी तगड़ी थी कि जो 99 को खत्म करती थी, तो उसमें 99 का कोई परसेंटेज लागू नहीं होता है। यही सिद्धांत है। तो वैसा कुदरत में तो यही सिद्धांत है कि जिसका जोर है यही परिणाम आएगा, जिसका जोर है उसी दिशा में परिणाम आएगा आगे जाकर के। जिसका कमजोरी है, कमजोर हारता है हमेशा। जोर वाला हारता है या कमजोर हारता है, हारता तो कमजोरी हारता है। ये तो बहुत सीधी सादी बात है। पहचान करके अगर सुने तो सर्वसम्मत करें, थोड़ा सम्मत करें, थोड़ा सम्मत नहीं करें, ऐसा बन ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि उनको पहचान ही नहीं आई, क्योंकि पहचान में ये बात है कि वो कितने हमारे से आगे हैं और कितना लोकोत्तर अपूर्व विवेक जिनको, जिनके मति में वर्तता है, पैदा हो गया है और वर्तता है, ऐसे लोकोत्तर और अपूर्व विवेक करने वाले को स्थूल अविवेक कैसे हो सकता है जो सोचते हैं कि उनका ये भूल है, तो क्या उनको उनमें विवेक बुद्धि नहीं है क्या? ऐसा सूक्ष्म राग का जो कण है जिसको अंतर जल्प कहते हैं, जो आत्मा संबंधी का विकल्प है, उनको भी भिन्न रख लिया। वैसे ऐसे विकल्प के काल में चित्त की शांति तो बहुत होती है, लेकिन उसमें भी उसको भ्रांति नहीं हुई कि ये शांति है, ये अशांति है। यहां तक जिसकी मति में सूक्ष्म विवेक है कि ये चित्त की शांति को भी अशांति के रूप में पकड़ लेते हैं, वरना ये तो दूसरा रूप लेकर आई है ये पर्याय। तो जो आकुलता वाली पर्याय है ये तो है ही गड़बड़ वाले, लेकिन इसने रूप बदल लिया पर्याय ने और शांत रूप धारण करके आई, आत्मा का विचार करने लगे, तो भी इसकी अशांति को जिसने पकड़ लिया कि तेरा रूप को मैं जानता हूं, तेरा रूप बदला है, लेकिन मैं अभी भ्रमित होने वाला नहीं, मुझे व्यामोह नहीं होगा तेरे शांति में। इसमें भी जो व्यामोहित नहीं होता है, ऐसा जिसको महाविवेक प्रकट हुआ हो, इसके लिए ये धारणा करना कि उसको स्थूल विवेक भी नहीं आता है, ये बात ही समझदारी की नहीं है। कोई समझदारी नहीं है इसमें। जिसको पहचान होती है महापुरुष की, उसको ये होता ही नहीं कभी, उसको शंका ही नहीं उठती, ऐसा विकल्प क्या उठे, कभी शंका ही पैदा नहीं होती कि इसकी गलती होती हुई है। पर हम तो बात बात में कह देंगे श्रीमद जी की ये भूल है, इनकी ये भूल है, ये ज्ञानी की ये भूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कितने आगे गए हैं उसका नाप हमारे पास होना चाहिए, और उसी के अनुसार इनके प्रति आदर और बहुमान और भक्ति के परिणाम रहने चाहिए। ये भी बात है कि जे भूमिका मां जे भूल थवी जुए, थवी न जुए ये था, तो ये भूमिका छूटी जाए, ते भूमिका छूटी जाए, समझा? तो ये भी भूल था तो ये भूमिका छूटी जाए, तो ये भी भूल तो ये करता नहीं, अने कोई करे तो ये भूमिका ये नहीं छूटी जाए से। तो ये तो आपने ख्याल होगा जो कि कहे कई भूमिका में भूल मर्यादा शू है, व्यवहार नहीं विषय नु ज्ञान करने प्रयोजन आटल है कि कई भूमिका में व्यवहार की मर्यादा शू है, जम के अत्यार दिगंबर मुनिओ है, टिप्पणी ना सवाल नहीं आ समझवा सवाल है। तो अपने व्यवहार एम समझा कि मुनि ने 28 मूल गुण ना व्यवहार हो, 28 मूल गुण पंचमावृत आदि, तो मैं एक मूल गुण टूटे तो मुनि योग्य दशा न रहे। तो देखा ये भी बात कही है कि आहार वगैरह ने बात तो देखा ये भी है, परिग्रह वगैरह ने बात तो देखा ये भी है, तो मानते नहीं तो वहां वो त्यागी है इसलिए महान आत्मा है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे जो भूमिका में जो व्यवहार होने योग्य नहीं हो, ऐसा व्यवहार दिखे तो दूर से नमस्कार कर लेना, अभी उसने इस भूमिका का त्याग कर दिया है, हमारा कोई इससे कोई प्रयोजन के वास्ता नहीं है, बात खत्म हुई। ऐसा बस बात खत्म हो गई, फिर वो सत्पुरुष नहीं है, ठीक है। अब तो ये दूसरी बात, यहाँ तो प्रसंग चल रहा है कि कोई सत्पुरुष के प्रति विरोध करता है तो वो सत्पुरुष की नहीं मानता है, अवगणना करता है, तभी तो विरोध करता है, क्योंकि ठीक है वो तो ज्ञानी पुरुष का क्या, तीर्थंकर जैसे ज्ञानी पुरुष का भी वो वचन नहीं सुनेगा, इसका वचन भी निष्फल जाएगा इसके आगे, इसका जो जोर है विरुद्ध अभिप्राय का, वो बहुत जबरदस्त जोर है, स्वतंत्र है। तो आप आदि के वाक्य, तीर्थंकर के वचन भी वाक्य निष्फल जाते हैं, तो आप आदि के वाक्य में वचन निष्फल हो और उन्हें क्लेश रूप भाषित हो, इनकी भलाई की बात उनको क्लेश रूप भाषित होती है, मुझे उपदेश देता है, तो थोड़ा उपदेश हमने हमको कहाँ सुनना है, क्यों उपदेश देने को आते हो तो ऐसा हमको हो जाता है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, तो उसको ऐसा हो ही, ये सहज इनकी योग्यता है, तो उसमें कोई आश्चर्य का हमको तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। ऐसा समझ कर ऊपर प्रदर्शित अंतरंग भावना से, मैंने करुणा बुद्धि, करुणा की भावना से उनके प्रति बर्ताव करना, अपने जो बर्ताव करना है वो अपने कोई इनके प्रति द्वेष युक्त बर्ताव नहीं करना है, अपने तो उनकी भलाई का ही बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो सल्टे नहीं सल्टे, हमें इसकी कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हमारा बर्ताव तो ठीक हो, वो इनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और किसी प्रकार से भी उनने आप संबंधी क्लेश का कम कारण प्राप्त हो ऐसा विचार करना इस मार्ग में योग्य माना गया है। देखो मार्ग की बात ले लेते हैं कि जैसे कैसे भी उनको क्लेश कम होवे और क्लेश का कारण कम प्राप्त होवे, उसकी सावधानी रखना यही योग्य है, दूसरी इससे विरुद्ध बात करना योग्य नहीं है। देखिए शास्त्र में ऐसा मार्गदर्शन निकालना मुश्किल पड़े, मुमुक्षु के लिए ऐसे प्रकार के मार्गदर्शन शास्त्र में से निकालना कठिन है, ऐसी बात ऐसे पत्रों में ही आ सकती है, जो शास्त्र में ढूंढने जावे को जल्दी नहीं मिले, ये पत्र बहुत विस्तार वाला है। फिर एक और सूचना स्पष्ट रूप से लिखने योग्य प्रतीत होता है, इसलिए लिखते हैं, वह यह है कि हमने पहले आप इत्यादि को बताया था कि यथा संभव हमारे संबंधी दूसरे जीवों से कम बात करना, आगे भी आपको ये सूचना की थी, अब इस बात को दोहराते हैं कि हमारे विषय में हमारी प्रसिद्धि हुए ऐसी बातें आप लोगों को मत किया करो, हमने आगे भी आपको मना किया है, आज भी आपको मना करते हैं कि हमारे प्रशंसा करो, हमारी महत्ता करो, हमारी प्रसिद्धि हुए ऐसी प्रवृत्ति आप लोगों को नहीं करनी है। देखिए क्या उस लाइन पकड़ते हैं आज तो लोग अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं, परिश्रम करते हैं, हैरान होते हैं ना हर प्रकार से, बोलते कि नहीं हमारी बात ही मत करो तुम, हाँ वो भी ऐसे उनकी बात है। हमने कहा कि आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है, स्थिति को अगर गुरुदेव को पता चलेगा कि आपकी ऐसी अच्छी स्थिति है आत्मा की, तो गुरुदेव को प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्न होंगे और क्या उपकार है, तो इस उपकार बताने का भी ये प्रसंग रहेगा हमारे लिए, हमको कोई हमारी महत्ता नहीं बढ़ानी है, लेकिन जब इनका उपकार है गुरुदेव का, हमने समझाने का थोड़ा कोशिश किया एक दफे, तो ये उपकार हम विदित करें, उनको उपकार से विदित करें कि महाराज आपका हमारे पर बहुत उपकार हुआ है, हमारी आत्मा को अनंत लाभ हुआ है, तो इसमें क्या आपत्ति है, और हम साथ में आएंगे आपके साथ, ये भी काम मेरे से, तो गुरुदेव से बातचीत करने का काफी ये प्रश्न व्यवहार रहा कई दफे, तो मैं साथ में आऊंगा ऐसा करके भी समझाया, सुन तो लिया सब बात, मेरे जो स्टाइल से जो ढंग से मैंने बात किया, तो उनको ऐसे तो कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं था, फिर भी एक बहुत तगड़ी बात कर दी उन्होंने, ये कहा इस सिवाय मानो कि गुरुदेव ने जान लिया तो हमारे आत्मा को कितना लाभ होगा। क्या कहा? अगर गुरुदेव ने जान लिया तो हमारे आत्मा को कितना लाभ होगा, और अभी नहीं जाना है तो इससे कोई आत्मा को नुकसान होता है क्या? आप इतना बोझा मत उठाओ। क्या कहा? आप इतना बोझा मत उठाओ, बस बात खत्म हो गई। प्रसिद्धि का कोई मौका आता है, विचक्षण होते हैं कि भले ही हम दूसरे दृष्टिकोण से गुरुदेव के पास जाएंगे, इनके उपकार वर्णन करने के लिए जाएंगे, उनकी भक्ति के हिसाब से जाएंगे, लेकिन एक दूसरी बात इसी वक्त खड़े होने वाली है जो प्रसिद्धि की है, और ये प्रसिद्धि है ये जीव को एकांत में अपनी जो साधना करनी है उसमें थोड़ी बाधक होने के निमित्त होती है। तो उसकी वृत्ति ऐसी थी कि वो दूर रहना चाहते थे प्रसिद्धि से, तो उन्होंने इस स्टाइल से जवाब दे दिया कि अपने आत्मा को कोई लाभ नहीं इसमें, हम तो हमारे लाभ को देखते हैं, पर दूसरे के लिए बोझ आपको उठाना क्या आवश्यक है, कोई आवश्यकता नहीं है इस बात की, छोड़ो इस बात को, छोड़ दिया फिर। लेकिन जब इनकी तो स्पष्ट आज्ञा है तब तो आज्ञा में रहना अच्छा है, अगर ऐसी आज्ञा नहीं हो तो वो बात अच्छी है। लेकिन जब सीधी आज्ञा मिल जावे कि आपको ऐसा नहीं करना है, बस बात खत्म हो गई, फिर नहीं करना है। अगर ऐसी आज्ञा नहीं हो तो ये कोई दुर्गुण नहीं है कि दूसरे लोग भी सत्पुरुष को अनुसरण करने लगे, इनके परिचय से आत्महित के निमित्त में नजदीक आ जाए, समीप आ जाए, ये कोई प्रवृत्ति अनुचित नहीं है वास्तव में। तो ये भी बात कही है मैंने, दोनों का एकांत नहीं है, न इसका भी एकांत है न इसका भी एकांत है, दोनों का एकांत नहीं है, परिस्थिति के अनुकूल ये बात अपनी अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए, होनी चाहिए, उतनी बात है। हाँ, मूल तो हेतु एक ही है, पवन बदलता रहेगा, जिस नाव में हम सफर कर रहे हैं उसमें पवन बदलता रहेगा, हमको क्षण बदलता रहना चाहिए। पवन बदले और हम क्षण नहीं बदले तो जो नाव की गति है वो किनारे पर आने वाली नहीं है। हमें तो जैसे कैसे भी किनारे पहुंचना है संसार के, संसार के समुद्र में जिस नाव में हम सफर कर रहे हैं उसमें हमारा एक ही दृष्टि बिंदु है कि हमें किनारे पे पहुंच जाना है जैसे कैसे भी। जब ये किनारे पहुंचने का पवन है तो हमें यही अनुकूल है, और वो किनारे पहुंचने का पवन है तो यही हमें अनुकूल है, हमको तो किनारे पहुंचना है, उसमें कोई फेर नहीं है, ऐसी बात है इसमें। तो ऐसे छोटे मोटे प्रसंग में कैसे एडजस्टमेंट करना, ऐसी बात को बदलना, ये विवेक अपने आप को होना चाहिए प्रसंग प्रसंग पर। ये भी था। तो इसका मतलब ये हुआ है कि तृषातुर को पानी पाना आवश्यक है, जरूरी है। जिसको तृषा लगी है इसको तो पानी देना जरूरी है, क्योंकि उसका तो प्राण बच जाएगा, वो जिंदा रह जाएगा वरना मर जाएगा। और जिसको तृषा नहीं है उसको तृषा जगे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो पानी को धक्का मारेगा। लेकिन उसको तृषा होवे इस परिस्थिति में लाने की कोई चेष्टा करे तो उतनी करो, इससे आगे की मर्यादा में करने योग्य नहीं है। बहुत सी बातें उन्होंने तो खोली है, श्रीमद जी ने बहुत सी ऐसी बातें खोली है। कम बात करना, मैंने जो बात नहीं करना है, नहीं कम बात करना ऐसा कहा है, मर्यादा है इसकी। मैंने इन लोगों से बात नहीं करना जिसको द्वेष होता हो, वहां बार बार जाकर के आप हमारी प्रशंसा करते रहो तो उनको तो द्वेष बढ़ जाएगा, तो द्वेष बढ़ने से उनको तो सत्पुरुष के प्रति जितना द्वेष बढ़ेगा उतना आवरण बढ़ जाएगा, इनकी आत्मा को नुकसान होगा, ऐसा क्यों करते हो? आप उची कम करना, मैंने उची कर दिया। इस अनुक्रम से बर्ताव करने के ध्यान का विसर्जन हुआ हो तो अब फिर से स्मरण रखना, हमारी आगे की सूचना का विस्मरण हो गया हो तो हम तुम्हारे ध्यान पर ये बात को लाते हैं। हमारे संबंध में और हमारे कहे या लिखे हुए वाक्यों में, वाक्यों के संबंध में ऐसा करना योग्य है, हमारे संबंध में या हमने कुछ बात कही हो इस वचन के संबंध में, ऐसा कहा है महापुरुष ऐसा कहते हैं बार बार इसके पास ऐसे हमारी बात है, हमारी कही हुई बात को भी आप मत करो। और अभी इसके कारणों को आपको स्पष्ट बताना योग्य नहीं है, ऐसा हम क्यों सूचना करते हैं इसके कारण को आपको बताना हम जरूरी नहीं समझते। तथापि यदि अनुक्रम से अनुसरण करने में उसका विसर्जन होता हो तो दूसरे जीवों को क्लेशादि का कारण हो जाता है, यह भी अब क्षायिक की चर्चा इत्यादि प्रसंग के आपके अनुभव में आ गया है। ये जो चर्चा आप लोगों के बीच में चली है इससे ये बात को हमें पता चल गया, इसलिए आपने जो विस्मरण किया है हमारी सूचना को इसका आपको फिर जिक्र करते हैं। इस बात को तो आप समझो, ज्यादा बात मत करो हमारे लिए, हमारे हमारी बातों के लिए भी ज्यादा बात मत करो, हमारे व्यक्तिगत भी ज्यादा बात मत करो। जो कारण जीव को प्राप्त होने से कल्याण का कारण हो उन जीवों को इस भव में उन कारणों की प्राप्ति होती हुई रुक जाती है। हमारी बात तो जीवों को कल्याण के कारण है लेकिन उनको तो इसमें रुकावट और बढ़ जाती है, क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानता से न पहचानते हुए सत्पुरुष संबंधी आप इत्यादि से प्राप्त हुई बात से वे सत्पुरुष के प्रति विमुखता को प्राप्त होते हैं और विमुख हो जाते हैं, विमुखता में और दृढ़ हो जाते हैं और द्वेषपूर्ण बर्ताव में आ जाते हैं, तो ऐसा उनसे करना योग्य नहीं है। उसके विषय में आग्रह पूर्वक अन्य अन्य चेष्टाएं कल्पित करते हैं कौन? सत्पुरुष के विषय में, उसके विषय में मैंने सत्पुरुष के विषय में वे लोग आग्रह पूर्वक अन्य अन्य चेष्टाएं कल्पित करते हैं, मैंने अफवाहें घुमाते हैं, विमुख ज्यादा होने में अफवाहें घुमाते रहते हैं और फिर वैसा योग होने पर वैसी विमुखता, आप लोगों की बातों का ऐसा योग होने पर वैसी विमुखता प्राय प्रबलता को प्राप्त होती है, इनकी विमुखता बढ़ जाएगी, तो ऐसा क्यों करते हो? जब जानते हो कि इनकी योग्यता ऐसी है तो वो विमुखता में आगे बढ़े, इस प्रकार का बर्ताव करना अपनी ओर से तो योग्य नहीं है। ऐसा न होने देने के लिए और इन भाव में और इस भाव में यदि उन्हें वैसा योग अज्ञानता से प्राप्त हो जाए तो कदाचित श्री को प्राप्त करेंगे, ऐसा न होने देने के लिए मैंने वो दूर हो जाए ऐसा नहीं होवे, और इस भूमि यदि उन्हें वैसा योग अज्ञानता से प्राप्त हो जाए तो कदाचित श्री को प्राप्त होगे, अजानपने अज्ञानता से मैंने अजानपने, तो उसको योग की प्राप्ति होती रहे होवे ऐसा जो कोई मौका है तो ये देख लेना, भले अनजानपने में भी, अज्ञान शब्द नहीं रखना चाहिए, अनजानपने में भी उसको कदाचित उसका कल्याण हो, ऐसा कोई युग प्राप्त हो जाए, ऐसी धारणा रखकर, ऐसा मन में अभिप्राय रखकर, अंतरंग में ऐसे सत्पुरुष को प्रकट रखकर, आप तो सत्पुरुष को अंतरंग में प्रकट रखो, आप तो यही रखो कि मेरे समीप बैठे हैं तो मेरे जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में मर्यादा आ जानी चाहिए। जैसे समीप में प्रत्यक्षता में मर्यादा रहती है, वैसे परोक्षता में अगर मर्यादा रखनी हो तो अंतरंग में सत्पुरुष को प्रकट रखो। हमारे समाज में भी थोड़ी उथल पाथल की शुरुआत हुई तो पूज्य बहनश्री ने ये बात निकाली थी, मुमुक्षुओं को, सभी मुमुक्षुओं को, भले ही गुरुदेव इधर नहीं है तो भी अपने हृदय में प्रकट प्रत्यक्ष रख लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई मुमुक्षु अपनी मर्यादा के बाहर प्रवृत्ति नहीं करेगा। अगर हम ये मान लें कि अब तो गुरुदेव नहीं है तो हमको कौन रोकने वाले हैं, दूसरे की तो हम सुनेंगे भी नहीं, तो ये मर्यादा बाहर की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए भले ही गुरुदेव उपस्थित नहीं है लेकिन हृदय में उसको उपस्थित रखने चाहिए। कही थी बात शुरू शुरू में, तो कुछ मर्यादा में ही बात रह जाएगी, वरना अगर इस बात को नहीं रखी तो बात मर्यादा बाहर चली जाएगी। ये बात शुरू शुरू में निकली थी, मैंने तो महाविवेक है उनके, तो बातें ऐसी होती है, समझे तो मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं हो, आवरणीय आत्मा को इतना नहीं आवे तो वहां पतन नहीं होता है, नीचे का परिणाम होते ही नहीं है। तो ऐसे कहते कि अंतरंग में आप तो ऐसे सत्पुरुष को प्रकट रखकर बाह्य रूप से गुप्तता रखना अधिक योग्य है। हमारी गुप्तता बाह्य में रखना, अंतरंग में प्रकट रखो, बाहर में हमें गुप्त रख दो, ये हमारी सूचना है आपके लिए। वह गुप्तता माया कपट नहीं है, क्योंकि माया का ये स्वरूप है कि अंतरंग में कुछ बाहर में कुछ, तो उसको माया कहते हैं, तो कि ये माया कपट नहीं है। वह गुप्तता माया कपट नहीं है क्योंकि वैसा बर्ताव करना माया कपट का हेतु नहीं है। क्या कहा? वहां माया कपट का अभिप्राय नहीं है, वहां तो जीव के कल्याण का स्वपर हित का अभिप्राय है, तो माया कपट का वहां हेतु नहीं है, उनके भविष्य कल्याण का हेतु है। ऐसा करने में भी उनका भविष्य में कल्याण देखना है, उसका अहित नहीं देखना है। वो दुर्गत में चले जाए वो नहीं चाहते, वो भी सन्मार्ग पर आ जाए, ऐसी भावना रखते हैं। जो वैसा होता है वो माया कपट नहीं होता, ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा जो होता है उसमें माया कपट का कोई बात होता ही नहीं है, ये तो स्वपर हितक हितकारक प्रवृत्ति होती है। और ऐसे इस तरह से जब ऐसे प्रसंग हुए तो इस प्रकार से वर्तन करना ही मुमुक्षुओं के लिए, अपने और सामने वाले के लिए हितकर होता है। इस प्रकार का मार्गदर्शन बहुत बढ़िया आया है इधर।
आदि देव भगवान।